नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम अश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 17 भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार। श्लोक संख्या 1।
श्री शुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन् स्वभर्ता कश्यपेन वै अन्वत्तिष्ठद्व्रतमिदम् द्वादशाः मतन्द्रिदा। श्री शुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन् स्वभर्ता कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद्व्रतमिदम् द्वादशाः मतन्द्रिता। श्रीशुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन् स्वभर्ता कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद्व्रतमिदम् द्वादशाः मतन्द्रिता।
शब्दार्थ। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार उक्ता कहे जाने पर सा उस अदिति ही अदिति ने राजन हे राजा स्वभर्ता अपने पति कश्यपेना कश्यप मुनि से वह निःसंदेह अनु इसी प्रकार से अतिष्ठतः संपन्न किया व्रतम इदम् इस पयोव्रत को द्वादशहम् 12 दिनों तक अतन्द्रिता बिना आलस्य के। अनुवाद ओम तत्त्व श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि द्वारा उपदेश दिए जाने पर अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। तात्पर्य किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए विशेषतया आध्यात्मिक जीवन में गुरु के प्रामाणिक आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। अदिति ने ऐसा किया। उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में पुष्टि हुई है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो। मनुष्य को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है और गुरु के आदेशों की परवाह नहीं करता तो वह असफल हो जाता है। यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। अदिति ने अपने पति एवं गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और इस तरह से वे सफल हुई। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम अर्थात जीवात्मा की कोई कामना न हो, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताओं वा जगदीश काम है। किसी भी प्रकार का धन जन ऐश्वर्य इच्छा नहीं है। या सर्व कामों, जैसा कि हम आरती में गाते हैं, धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे धन का। धन आए संपत्ति आए शरीर हिष्ट पुष्ट रहे इंद्रियां संतुष्ट रहे, इस प्रकार की कामना भौतिक कामना है, संसार को भोगने की इच्छा। अकाम मतलब कोई कामना न हो, सर्व काम मतलब सभी प्रकार की भौतिक कामनाएं हो, या दोनों से परे मोक्ष काम इस संसार से मुक्ति की कामना हो, संसार के द्वंद्व छुटकारा मिल जाए, दुखों छुटकारा मिल जाए और हम मुक्त होकर भगवान में विलीन हो जाएं। यदि इस प्रकार की कामना हो तो भी एक उदारधि मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, ऐसा शास्त्रों का मत है कि आपके पास कोई कामना हो या कोई कामना न हो या मोक्ष की इच्छा हो तो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की तीव्रता से भक्ति करता है। यदि हम भगवान की तीव्रता से भक्ति करते हैं तो ये सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसे तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कांक्षतम कर्मणाम सिद्धि यजन्तः यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। यदि इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म की इच्छा है, कामनाएं हैं बहुत विभिन्न प्रकार की, तो उस कामनाओं की तुष्टि के लिए कांक्षतम कर्मणाम सिद्धि यजन्त इह देवता, अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक अनेक नियामक देवता है, इनकी पूजा करो तो ये मिल जाएगा, इनकी पूजा करो तो ये मिल जाएगा। इसी के अनुसार भौतिक संसार में लोग अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार का उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, यही धारणा है। बृहस्पतिवार को व्रत करेंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगे, शनिवार को व्रत करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, सोमवार को व्रत उपवास करेंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। और ये सब शास्त्रों में विधि विधान है, क्योंकि ये जितने नियामक देवता हैं ये हमारी इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही नियोजित किए गए हैं। यदि उनके निर्धारित हम कर्म करें, धर्म का पालन करें, तो वो लोग हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। कांक्षतम कर्मणाम सिद्धि जनता यदि क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, अर्थात उनको अपने कर्म में सिद्धि मिल जाएगी, जिस उद्देश्य से वो गए हैं वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इस मनुष्य जीवन का जो परम सिद्धि है भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति या सदैव सदैव के लिए शाश्वत जीवन प्राप्त करना, इस दुखालम संसार से निकल जाना, ये कोई नहीं दे सकता है। प्राय देवता लोगों की भक्ति में होता है कि उनको आप थोड़ा धमकी दे दो कि हम सर काट देंगे, सर काट के चढ़ा देंगे, हम विष खा लेंगे, थोड़ा कठिन तपस्या कर दो तो लोग बाध्य देने के लिए, सोने की लंका मिल जाएगी, हिरण्यकश्यपु को अमरता का वरदान ब्रह्मा जी से मिल गया, दुर्गा जी से कंस को वरदान मिल गया। हम देखते हैं बड़े बड़े असुर हैं और अपने कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं को प्रसन्न करते हैं और बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, लेकिन उनका उसमें वास्तविक लाभ नहीं होता है, वास्तविक कल्याण नहीं होता। उनके कार्यों में सिद्धि मिल जाएगी लेकिन जो परम सिद्धि है उनको नहीं मिलेगा। तो भगवान भी देते हैं और भगवान के जो अंतर्गत जो भगवान का सिस्टम है, जो देवता लोग नियुक्त किए गए वो लोग भी देते हैं, लेकिन दोनों को देने में अंतर है कि एक दे देते हैं लेकिन देने के बाद क्या होगा, आप मरोगे जियोगे उनसे मतलब नहीं है। लेकिन भगवान पहले तो प्रायः देते नहीं है, क्योंकि कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़े विषय मांगे यही बड़ा मूर्ख, आमी विज्ञा यही मूर्खे विषय कहने दीप, स्वचरण अमृत दिया विषय भुलाई। यदि कोई मेरा भजन करता है, मेरा भक्ति करता है और मेरा भजन भक्ति करते हुए हमसे संसार का सुख संसार का भोग मांगता है जो कि विष के समान है, तो मैं विष क्यों दूंगा उसको जिसमें उसका हित नहीं होगा। तो प्राय तो मैं पहले विष नहीं दूंगा और क्या करता हूं, आमी विज्ञा ये मूर्खे विषय कहने दीप, ये मूर्ख है हमारा भजन करता है और हमसे विष मांगता है, तो ये मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं तो विज्ञ हूं, मैं तो विद्वान हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको विषय सुख नहीं दूंगा, उसको मैं क्या करूंगा अपना चरणामृत दे दूंगा, और चरणामृत पीने से भक्ति करने से क्या होगा, वो विषय सुख की लालसा छोड़ देगा, विषय सुख ही भूल जाएगा। तो प्राय तो मैं ये करता हूं कि लोगों को देता नहीं हूं, अपना चरण कमल दे देता हूं, अपनी भक्ति देता हूं। और यदि भगवान की अनुकंपा से भगवान कृपा से भगवान देते भी हैं, तो भगवान जब देते हैं संसार का विषय सुख एक प्रसाद के रूप में देते हैं, और प्रसाद के रूप में सेवन करने से तथा कथित भक्त की मति विचलित नहीं होती है। जैसे हम प्रसाद खाते हैं, प्रसाद में हम अन्न ही खाते हैं, एक प्रकार का अन्न है। भगवान कहते हैं कि यदि वो भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में हम विशिष्ट भगवान का सेवन नहीं करते हैं तो अन्न नहीं खाता है, वो खाना नहीं खाता, क्या खाता है, पाप खाता है, तो पाप हो गया, वही खाना है लेकिन वो पाप हो गया यदि हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पका के खाते हैं। और दूसरी जगह यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यंते सर्व किल विषय बुझते थे तो हम पापाम ये पचात आत्म कारणात्। दूसरा क्या है कि जो लोग यज्ञों में उच्छिष्ट पदार्थ का सेवन करते हैं, भगवान को अर्पित करके प्रसाद लेते हैं, तो वो भी अन्न नहीं है लेकिन हमारी मुक्ति कारण बन जाता है। बहुत आसानी से साधु भक्त मुनि इस संसार सागर से पार हो जाते हैं, कैसे, भगवान को उच्छिष्ट सेवन करके, भगवान को उच्छिष्ट खा के। तो दोनों भोजन हुआ लेकिन एक संसार में बांध देता है और एक संसार से मुक्त कर देता है, क्योंकि एक प्रसाद के रूप में मिला है और एक भोग के रूप में मिला है। यदि हम भोग के रूप में लेते हैं तो बंधन बन जाते हैं, यदि प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारी मुक्ति हो जाती है। उसी प्रकार यदि भगवान की कृपा से भगवान प्रसन्न होकर खुश होकर अपने भक्तों को कुछ देते हैं तो बंधन का कारण नहीं बनता है। भगवान देते भी हैं, भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया, भगवान ने प्रहलाद महाराज को दिया, भगवान ने दृष्टि महाराज को दिया, भगवान ने अम्बरीश महाराज को दिया, भगवान ने सुदामा को दिया, लेकिन जितने भी भगवान हैं भगवान की कृपा से जिन भक्तों को ऐश्वर्य मिला है उनका पतन नहीं हुआ है। और जो लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए देवताओं को प्रसन्न करके प्राप्त किए हैं उनका नाश हो जाता है। इसलिए शास्त्रों का यही मत है कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यदि आपके पास कोई कामना है, चाहे कोई कामना नहीं है, चाहे मुक्ति चाहिए चाहे मोक्ष चाहिए, जो भी चाहिए, हमको धीरता से भगवान के चरणों की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ही वास्तविक कल्याण है, इसमें ही वास्तविक हित है। तो अदिति जो देवताओं की मां है, वो बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि उनके पुत्रों का राज्य असुरों ने छीन लिया था और उनको बेघर कर दिया था। वो लोग जंगल जंगल घूम रहे थे, छिप कर घूम रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था, रहने का खाने कोई ठिकाना नहीं था। तो उनकी मां बहुत दुखी थी और कश्यप मुनि आते हैं एक दिन और अदिति के चेहरे पर उदासी देख के उदासी कारण पूछते हैं। अदिति बहुत विस्तार से उन दुखों का कारण बताती है और बोलती है कि आप सर्व समर्थ हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारी स्थिति पर थोड़ा विचार करिए, हमारे पुत्रों की स्थिति पर विचार करिए और कुछ ऐसा उपाय करिए कि जो उन्होंने वस्तु खो दी है, जो अपना राज्य पाठ सब खो दिए हैं, उनको दोबारा मिल जाए। कुछ ऐसा उपाय करिए क्योंकि आप सर्व समर्थ हैं। पहले तो कश्यप मुनि ने जब ऐसी अदिति के मुख से बात सुनी तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य किससे हुआ? भगवान की माया शक्ति पे आश्चर्य हुआ। मानो कश्यप मुनि ऐसा सोच रहे हैं कि एक ही घर की बात है, अदिति की संतान देवता लोग हैं, अदिति के असुर लोग हैं और ये बोल रही है कि दोबारा इनको राज्य मिल जाए, भले वो बेघर हो जाए। कुछ समय पहले वो लोग बेघर हो गए थे, बलि महाराज को देवताओं ने मार दिया था, तो अभी तो किसी के बेटे ही थे, लेकिन अभी इनके बेटे राज से वंचित हो गए हैं, तो उनको मोह जता रहा है। और अर्थात कश्यप मुनि आश्चर्य व्यक्त कर रहे एवं भत्यर्थितो अदित्या कस्ता माह चेन्निवह अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्धम इदम जगत। तो भगवान की माया शक्ति, जो भगवान विष्णु की माया शक्ति है, उस पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि ओह कैसा भगवान का ये संसार है, कैसी माया शक्ति है जो स्नेह रूपी रस्सी की गांठ में पूरे संसार को बांध के चला रही है। वास्तव में तो हम आत्मा हैं और आत्मा का भगवान से नित्य संबंध है। ये शरीर जो हम देख रहे हैं भौतिक तत्वों से बना हुआ है, भौतिक तत्वों में मिलकर खत्म हो जाएगा और आत्मा नित्य है, शाश्वत है। यहाँ कौन किसका पति, यहाँ कौन किसका पुत्र, यहाँ कौन किसका माँ, कौन किसका पिता, लेकिन फिर भी मैं और मेरा ये ममत्व का बोध जो स्नेह बंधन से बांधते हैं, देश परिवार समाज भाई बहन बंधु जो भी रिश्ता है, एक स्नेह रूपी डोर से भगवान ने बांधा है जो दिखता नहीं है। वास्तव में किसी का कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान ने एक स्नेह रूपी रस्सी सबको बांध के रखा है। और क्या मजाल है कि उस रस्सी को कोई काट दे और रस्सी दिखता भी नहीं है। हाँ, वो चैन और रस्सी दिखता नहीं कि एक दूसरे जगड़ के बांधा गया है, लेकिन फिर भी स्नेह रूपी शक्ति के रूप में वो माया शक्ति विद्यमान है जो पूरे संसार को एक दूसरे से बांध कर रखी है। और ये आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कश्यप मुनि कि एक प्रजापति की पत्नी होकर के भी इस प्रकार के बंधन में पड़ी हुई है, ज्ञान नहीं है इसको। हमारे पुत्र सुखी हो जाए और उसके पुत्र भले ही फिर जंगल में जाकर वो दुख उठाए। अर्थात ये जो ममत्व का बोध है, मैं मेरा, ये सिर्फ पृथ्वी लोक तक सीमित नहीं है, ये देवताओं के लोक में भी ये चीजें हैं, वहां भी ये सब चलता है। श्री राधा राज बिहारी श्री सीताराम श्री गौरदास श्री प्रभुपाद जी भगवान की जय। तो यहां तक इसका प्रभाव है, इस द्वंद का। तो जब इन्होंने ऐसा सुना तो कश्यप मुनि ने पहले समझाया, थोड़ा आत्मा और प्रकृति के विषय में उनको प्रवचन दिया, लेकिन वही आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि उनका प्रवचन काम नहीं आया। एक दो श्लोक में उन्होंने प्रवचन दिया है कि हम शरीर नहीं है, शरीर से संबंधित वस्तुएं हमारी नहीं है, उसमें क्या शोक करने का, भजन करो, सब काल के वशभूत होता है, सब भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, इसमें इतना सोचने का नहीं है। तो कुछ समझाया लेकिन उनको असर नहीं पड़ा, इसलिए बोलते हैं माया बलम विष्णु स्नेह बद्धम इदम जगत, कि किस प्रकार संपूर्ण जगत को भगवान स्नेह रूपी माया शक्ति के बस में बांध कर रखे हुए हैं, कोई निकल नहीं पाता है, कोई काट नहीं पाता है, वास्तव में कुछ है नहीं, बस एक शब्द है बीच में स्नेह का बंधन, और उसमें अदिति माता बधी हुई है। तो उनको कुछ प्रवचन लाभ नहीं किया, और वास्तव में प्रवचन लाभ नहीं करता है। हम शरीर हैं नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये संसार दुखालयम है, भगवान नित्य है, तो बहुत सारे दार्शनिक विचार हैं, लेकिन इन दार्शनिक विचारों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है यदि साथ में भगवान की भक्ति न हो तो, कुछ असर नहीं डाल सकती है। मान लीजिए बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, भौतिक तत्वों का अध्ययन किया, तो हम कहां तक जाएंगे, यही जाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, और फिर ब्रह्म में तदाकार होने का विचार करेंगे यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो भी घाटा है, वास्तविक फायदा नहीं है, क्योंकि हम शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शाश्वत जीवन प्राप्त होगा पूर्ण रूप से चेतना शुद्ध हो सकती है भगवान का भजन करने से ही। इसलिए तुरंत आगे के श्लोकों में कश्यप मुनि अदिति से बोलते हैं कि एक उपाय है तुम्हारी इच्छा पूरी करने का, क्या उपाय है, कि तुम भगवान की भक्ति में लगो, जो कि हर एक के स्वामी हैं, और कामान हरिन दीनानुकंपत, और यदि उनके पास कोई भी किसी प्रकार की कामना लेकर जाता है तो उसको पूरा करते हैं, क्यों, क्योंकि वो दीन अनुकंपन है, अर्थात सभी दीन दुखों पर कृपा करने वाला है, जो भी उनके दरबार में जाता है कोई खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि उनका स्वभाव है कि जो भी उनके शरण में गया है उनके ऊपर वो कृपा करते हैं। कैसे कृपा करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वास्तविक कृपा ही करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया, यदि योग्य पर्सन नहीं है तो नहीं देंगे, यदि योग्य पर्सन है तो देंगे, वो कृपा करते हैं क्योंकि अनुकंपा है, दीन स्वाभाविक उनके अंदर करुणा है, हे कृष्ण करुणा करुणा सिंधु, वो करुणा के सागर हैं, जिस प्रकार सागर की गहराई हम नहीं नाप सकते, इसी प्रकार भगवान कृष्ण में, भगवान चैतन्य महाप्रभु में हम जीवों के प्रति कितनी करुणा है, कितनी दया है, हम सोच नहीं सकते हैं। उसी करुणा और दया के वशभूत भगवान सभी जीवों की आवश्यकताओं की रक्षा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, सभी जीवों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि करुणा है, दया है, इसलिए भगवान समय समय पर आते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे उगे, कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं, कभी कभी भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान के अंदर करुणा है, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम भगवान के ही पुत्र हैं, बस भगवान के बिगड़े हुए पुत्र हैं, तो भगवान को भी बहुत चिंता होती है, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए भगवान बार बार सुधारने का प्रयास करते हैं, कभी खुद आके गीता भागवत के रूप में प्रवचन देते हैं, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, और उद्देश्य भगवान का यही है कि कैसे हम सुखी बने, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान दीन अनुकंपन है, भगवान दीन दुखियों पर कृपा करते हैं, इसलिए तुम एकमात्र भगवान की शरण में जाओ और उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो अमोघा, क्यों, क्योंकि उनकी भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है, यदि उनके लिए कुछ भक्ति किया है तो जरूर वो कृपा करेंगे, ऐसा सोच के कश्यप जी ने अदिति माता को आदेश दिया भगवान की भक्ति करने के लिए। केनाहम विधिना ब्रह्मा नु पस्थास्ते जगतपतिम, पति ने कहा कि ठीक है भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन किस विधि से भगवान की भक्ति करनी है, कैसे पूजा करनी है, कैसे आराधना करनी है, तो उसी प्रश्न के उत्तर में कश्यप मुनि ने पयोव्रत पूजा विधि का पालन करने के लिए बताया, और पयोव्रत की जो पूजा की विधि है और कुछ नहीं है, भगवान की भक्ति ही है, भगवान की भक्ति, क्योंकि भक्ति में भी बहुत सारे नियम कानून है, और ये थोड़ा विशेष नियम कानून है, जो कि सिर्फ 12 दिन में भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो इसलिए विशेष व्रत है, एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान है, विशेष प्रकार की विधि से भगवान की पूजा करना है, जिसमें उपवास करना है, भगवान का एक मंत्र जप करना है, पाठ करना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, शुचिता का ध्यान रखना है, तो एक विशेष प्रकार की भक्ति का ही अनुष्ठान है जो कि 12 दिन में संपन्न करना है। बहुत ही कठिन व्रत है, क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक जीवन में, जैसा कि प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में यदि हम प्रगति करना चाहते हैं, विशेषतया किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए, विशेषतया आध्यात्मिक जीवन में गुरु के प्रामाणिक आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। कुछ नियम कानून होते हैं और उसका हमको जिम्मेदारी पूर्वक दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। तो पयोवृत्त विधि के विषय में बताया, उसका उपदेश दिया और बोले कि इस विधि से तुम भगवान का पूजा करो और ये विधि बहुत ही उत्तम है, यदि इस विधि से तुम पालन करोगे तो निश्चय ही भगवान तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध करेंगे। तैवं नियमा साक्षात एवः च यतो यमोत्तमः तपोदानं व्रतो यज्ञो येगतुस्यन्त अधोक्षज। बहुत प्रकार के तप हैं, दान हैं, व्रत हैं, यज्ञ हैं। कंक्लूजन रूप में कश्यप मुनि अदिति जी को बता रहे हैं कि बहुत प्रकार के अनुष्ठान हैं, व्रत हैं, पूजा हैं, लेकिन समस्त व्रत अनुष्ठान पूजा का जो उद्देश्य है वो है भगवान अधोक्षज की संतुष्टि, क्योंकि वो संतुष्ट हो गए तो हमारी असंतुष्टि दूर हो जाएगी। हमारी संतुष्टि नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की असंतुष्टि दूर हो जाएगी। जैसे कि बोलते हैं कि भगवान की जो भक्ति है वो क्या है, वो एक वृक्ष में जल देने के समान है। यदि हम वृक्ष के मूल में जल देंगे तो जितनी भी तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, सब पोषित होंगी, जो कि 2 दिन पहले गोकुलेश्वरपुर ने क्लास में बहुत अच्छे से व्याख्या दिया था कि कैसे भगवान ही सबके मूल हैं और भगवान की पूजा करने से सबकी संतुष्टि हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रयोजन मनुष्य जीवन का सार्थकता इसी में है कि भगवान की भक्ति की जाए। हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी आदर संसार में नहीं हुआ जो सबको संतुष्ट कर पाए, लेकिन ये भगवान संतुष्ट हो जाए तो भगवान सबको संतुष्ट कर सकते हैं, सबको संतुष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जितने भी तप, दान, व्रत, उपवास हैं, सबका उद्देश्य यही है भगवान अधोक्षज की संतुष्टि, और इसीलिए तुम इसका दृढ़ता से पालन करो। जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुरहिदम सर्व भूतानाम ज्ञातम मा शांतिमिच्छति। यदि जीवन में सुख और शांति चाहिए तो क्या करना चाहिए, हाँ, चार चीजें समझना जरूरी है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, सभी यज्ञों का तपस्याओं का परम भोक्ता भगवान है, सभी लोगों के ईश्वर हैं, मालिक हैं, और उनकी संतुष्टि से ही हम जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज दिति भी बहुत ही चिंतित है, व्याकुल है, और भगवान कपिल बोल रहे हैं, कश्यप मुनि बोल रहे हैं कि यदि तुमको जीवन में संतुष्टि चाहिए, तुमको अपने कार्य में सिद्धि चाहिए, तो ये जो व्रत मैंने बताया उसका धीरता से पालन करो। और यही एक उद्देश्य है व्रत, उपवास, तपस्या का, कि भगवान अधोक्षज की धीरता पूर्वक भक्ति की जाए। इसीलिए भगवान की भक्ति करने का योजना है। जैसे कि महाराज कुलशेखर एक प्रार्थना में कहते हैं, इसी से संदर्भ में एक श्लोक है, यत् कृष्ण प्रणिपात धूलिधवलम तद्वर्ष्म तद्वय शिरः स्ते नेत्रे तमसोज्झिते सुरुचिरे याभ्याम हरि दृश्यते सा बुद्धि विमलेन्दु शंख धवला या माधवध्यायिनी सा जिह्वा अमृतवर्षिणी प्रतिपदम या स्तौति नारायणम। यत् कृष्ण परिपात धूलि धवलम तद्वर्षम तद्वय सिरे। तो बोल रहे हैं कि वही संसार में वही सर, सर मतलब सिर, वही सिर सर्वोच्च है जो भगवान कृष्ण के सामने झुकने से, भगवान श्री कृष्ण के सामने झुकने से लगी हुई धूल से धवल है। तब भगवान को प्रणाम किया हमने और भगवान को प्रणाम करने पर जमीन पे हम दंडवत करते हैं और दंडवत करते समय जो धूली लगती है शरीर पे या सर पे, वही वास्तव में सर की शोभा है। वो सर की शोभा नहीं है कि बहुत बड़ा डिग्री लिया, एमएचडी पीएचडी एमटेक बीटेक किया और सूट बूट टाई पहन के फिर सर और सीना तान के चल रहा है, हाँ, कि बहुत बड़ा आदमी आ गया। नहीं, वो सर की शोभा नहीं है, वो शरीर की शोभा नहीं है। शरीर की शोभा क्या है, बोलते हैं भगवान को प्रणाम करने से लगा हुआ जो धूल है वही वास्तव में सर की शोभा है। ते नेत्रे तमसोज्झिते सुरुचिरे याभ्याम हरि दृश्यते। बोले आंखों की शोभा क्या है, आंखों की शोभा यह नहीं है कि जाकर ब्यूटी पार्लर में आंखों खूब अच्छे सजाया, डेंटिंग पेंटिंग कराया और बहुत सुंदर लग रहा है। बोले कि नहीं, वो आंखों की शोभा नहीं है। आंखों की शोभा क्या है? बोलते हुए वही आंखें सर्वाधिक सुंदर हैं जिन्होंने भगवान हरि का दर्शन करने के बाद अंधकार को त्याग दिया है, वही आंखों की शोभा है जो एक बार भगवान का दर्शन करने के बाद समस्त अज्ञान को छोड़ दिए हैं, किसी भौतिक सौंदर्य को देखने की इच्छा नहीं होती है, सिर्फ भगवान के ही ऐश्वर्य को देखने में जो आंखें तृप्त होती हैं वही आंखों की सुंदरता है। सा बुद्धि विमलेन्दु शंख धवला या माधव अध्यायिनी, वही बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान माधव पर एकाग्र रहती है। वह उसी तरह विमल है जिस तरह चंद्रमा या शंख का उज्ज्वल तेज होता है। सा जिह्वा अमृत वर्षिणी प्रतिपदम या स्तौती नारायणम, और वही जीभ सदैव अमृत की वर्षा करती है जो भगवान का गुणगान करने में सदैव लगी हुई है। अर्थात यही वाणी का, यही सर का, यही हमारे शरीर का, यही तपस्या है। जैसे कि अम्बरीश महाराज के संदर्भ में आता है, सबै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्धने, उन्होंने अपने शरीर को, अपने हाथ को, अपने पांव को, अपने आंखों को, अपने मन को, अपने पैर को, सबको भगवान की सेवा में नियोजित करके रखा था और इस प्रकार उन्होंने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की अर्थात भगवान की कृपा। दुर्वासा मुनि इतने बड़े योगी तपस्वी, इतना बड़ा सिद्धि है कि वो अपने योग्य तपस्या के बल से किसी भी लोक में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, इतना बड़ा सिद्धि का बल है, तपस्या का बल है। लेकिन फिर भी सिंपल सी भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा में अपने संपूर्ण इंद्रियों को नियोजित करके अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि की तपस्या को पराजित कर दिया। ये भक्ति का बल है, सिंपल सा चीज है। जो तपस्या करते हो भगवान यही बोलते हैं ना, यद करो ये दस नास, ये जो हो सिद्धार्थी, तुम जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ पूजा करते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वही वास्तविक जीवन का उद्देश्य है और इसी में वास्तविक सफलता है, बाकी कुछ सफलता नहीं है। तो कश्यप मुनि अदिति को यही बताया कि यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है, तुम भगवान का भजन करो, धीरता से पालन करो और इस विधि से परम पुरुष तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस प्रकार सार में, संक्षेप में हमने अध्याय 16 का जो सार था वो पूरा किया। अभी आज से अध्याय 17 प्रारंभ हो रहा है जिसका शुरुआत सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। श्री शुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन स्वभर्ता कश्यपेन वै अन्वन्तिष्ठन् व्रतमिदं द्वादशाः मतंद्रिताः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि द्वारा उपदेश दिए जाने पर अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों का धीरता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। तो इस तात्पर्य में प्रोपाद जी एक साधक भक्त के लिए करणीय कर्तव्य बता रहे हैं कि यदि एक साधक भक्त साधना करके भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, भगवान कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा करणीय कर्तव्य क्या है। तो उसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने गुरु की आज्ञाओं का निष्ठापूर्वक और धीरतापूर्वक पालन करना। ये सबसे पहली कड़ी है, ये सबसे पहली सीढ़ी है, यही सबका आधार है। श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंद के 80 अध्याय में जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हैं, भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का यथोचित स्वागत किया और स्वागत करने के बाद भगवान कृष्ण सुदामा के साथ बैठे और ऐसे ही कुछ चर्चा प्रारंभ किए और उस चर्चा में बहुत ही संक्षेप में थोड़ा गुरु तत्व के ऊपर भी भगवान ने चर्चा किया है, जिसके माध्यम से हम इस श्लोक के आशय समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान सुदामा जी से कहते हैं कि हे मित्र, इस संसार में 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक कृष्ण जी सुदामा जी को बता रहे हैं कि 3 प्रकार के गुरु होते हैं। सवै सत्कर्मणा साक्षात, द्विजा तेरी संभव, आद्यव अंग यत्रा श्रमिणाम यथाहम ज्ञानदो गुरुः। तीन प्रकार के गुरु होते हैं। कौन सा गुरु? बोलते हैं कि भौतिक जन्म देने वाला पहला गुरु होता है। भौतिक जन्म क्या मतलब? अर्थात इस शरीर को जो जन्म देता है, इस पंच तत्व के शरीर को जो जन्म देता है, अर्थात माता पिता। ये माता पिता हर जीव के सबसे पहले गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु कौन है? माता और पिता। इस व्यक्ति को भौतिक जन्म देने वाला ही उसका प्रथम गुरु होता है। और जो उसे द्विज के रूप में ब्राह्मण की दीक्षा देता है, वह धर्म कृत्यों में लगाता है, वह निसंदेश उसका अधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है। उसके बाद कुल गुरु होते हैं, परिवार में गुरु होते हैं, जो दीक्षा देकर हमको धार्मिक कर्म करने के योग्य बनाते हैं। लाइक हमको जनेऊ पहनाया जाता है और बहुत सारे संस्कार होते हैं, और उस संस्कार के बाद फिर हम कोई भी आध्यात्मिक अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। तो दूसरा गुरु है जो कि हमको उस योग्य बनाता है कि हम ब्राह्मण की दीक्षा लेकर अनेक प्रकार के अनुष्ठांगिक कार्य संपन्न करें, आध्यात्मिक कार्य संपन्न करें। किंतु ये दो गुरु हो गए, उसमें एक तीसरा गुरु है। और तीसरा गुरु क्या है? बोलते हैं कि जो सभी आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, वह उसका परम गुरु होता है। निसंदेश वह मुझ जैसा होता है। चार वर्ण और चार आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। और चार वर्ण और चार आश्रमों में वो गुरु जो इन चारों आश्रमों और चारों वर्णों के अंदर जाकर इस प्रकार का ज्ञान देता है, जिस ज्ञान का आश्रय लेकर जीव इस भौतिक द्वंद्वों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है, वह सबसे बड़ा गुरु होता है। ये सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि और जो गुरु हैं वो वर्ण और आश्रम के अनुसार बधे हुए हैं। जैसे कुल गुरु होते हैं, कुल गुरु मतलब वो उनके परिवार के गुरु रहेंगे, वो फिर उस दूसरे गुरु रहेंगे। एक बार ऐसे ही हम महाराष्ट्र में प्रचार करने गए थे गीता का, तो एक बार एक गांव में हम रुके थे नांदेड़ साइड में। तो हम लोग मार्केट में प्रचार कर रहे थे, कुछ लोग आए और बोले महाराज जी हमारे एरिया के कुल गुरु आए हैं और हम बहुत आभारी होंगे कि यदि आप शाम को आप लोग भी आते तो थोड़ा अच्छा लगता, क्योंकि साल में एक ही बार हमारे गुरु आते हैं और पूरे गांव के गुरु हैं, पूरे गांव उनके अंडर में है। तो बहुत अनुरोध किया उन लोगों ने, तीन चार लोग आए थे। तो हम लोग बोले ठीक है, वो कुल गुरु थे गांव के। हम बोले ठीक है चलो, हम बंद करके आ जाएंगे 8 बजे स्टॉल। तो स्टॉल बंद किया हमने और इसके बाद हम लोग गए तो वहां के कुल गुरु आए थे। हम लोग गए तो बहुत अच्छा आसन ओसन लगा के चौकी पे बिछाया गया था सादर सत्कार करने के लिए। तो और हम लोग बैठे, उनके गुरुजी बैठे थे, उनके गुरुजी नीचे बैठे थे क्योंकि उनके गुरुजी वो मृग चर्म था, मृग चर्म के ऊपर बैठे थे। वो आसन ओसन पे गद्दी वो चौकी पे नहीं बैठते, नीचे ही बैठते हैं, जमीन पे ही सोते हैं, एक गमछा पहने हुए थे। हम लोग सोचे कि हम लोग भी नीचे बैठे, बोले नहीं नहीं आप लोग ऊपर बैठिए, गुरुजी ऐसे नीचे बैठते हैं। हम लोग ऊपर बैठ गए, फिर माताजी लोग आई, तिलक किया, चावल छिड़का, जो भी परंपरा सब किया, प्रणाम करने जा रहे थे हम लोग, प्रणाम मना किए। तो हम लोग से शुरू हुआ तिलक, चावल और माला। माताजी चार पांच माताजी लोग थी, लाइन से ऐसे करते हुए जा रहे थे। हम लोग 7-8 लोग थे, सब लोग का चेयर लगा हुआ था, चौकी बैठे हुए थे। इसके बाद करते हुए फिर ऐसा हो रहा था तब तक कुल गुरु जी का असली रूप दिखा। कुल गुरु ने अपना बीड़ी निकाला और फिर वो बीड़ी पीने लगे। तो एक अच्छे उत्साह से आए थे, लेकिन जब कुल गुरु का ऐसा रूप देखा तो फिर उत्साह घट गया कि क्या करेंगे, बैठे तो सम्मान ले ही रहे थे। तो करते हुए फिर कुल गुरु जी के पास वो लोग आए लास्ट में, और फिर सब माता जी उनको भी तिलक कंठे और माला सब दे रहे थे। और गुरुजी को जो प्रणाम करने का सिस्टम था, गुरुजी को प्रणाम करने का सिस्टम था कि सभी माताजी लोगों को वो पैर रखती थी गुरुजी के चरणों के ऊपर। चलो उतना भी ठीक है, होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद कैसे? गुरुजी आशीर्वाद देते थे, वो बीड़ी अच्छे पकड़ते हैं, तो जब माताजी लोग प्रणाम करती थी तो वही बीड़ी वाला हाथ सर पे रखते थे। और मैं सोचा कि कहीं बीड़ी गिर गया वो सब माता जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो बीड़ी वाले हाथ से सबको आशीर्वाद दिया। इसके बाद चले गए, फिर फल काट कर आया, फल खाया, उतना भी ठीक था। फिर ऐसे बातचीत हुआ, हम लोग कुछ बात नहीं किए क्योंकि पता चल गया कौन से स्तर के गुरु हैं, और ये पूरे गांव गुरु हैं। कम से कम नहीं तो 500-600 लोग आए थे उस समय, वो पूरे गांव उनसे दीक्षा लिया हुआ है, वो कुल गुरु हैं उस गांव के। और इसके बाद तो आश्चर्य तब हुआ जब हम बात करके बाहर निकल रहे थे तो जितना भी और वो गांव के मुखिया थे जिन्होंने इन्वाइट किया था, गांव के मुखिया उनके गुरु जी रुके थे, तो जितना भी घर का जूठन खाना पीना नाश्ता का जो पानी निकलता है वो तुलसी महारानी के गार्डन में जाता है। वो गार्डन बना है और वहां उनका जूठा हुआ सब पानी जाता है, और वहां पे इतने बड़े गांव के कुल गुरु विद्यमान है। तो जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु और गुरु, ठग गुरु, चिटर गुरु, जिसमें संसार भरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत, हाँ प्रभु जी, प्रभु जी सिर्फ देखते रह गए, प्रवचन कुछ किया नहीं है, अभी क्या प्रवचन सुनेंगे वो लोग सिर्फ स्वागत के लिए बुलाया, स्वागत ले लिया फिर उनके चले गए अभी उनको क्या प्रवचन करेंगे, पूरा गांव का बात है, कुछ प्रवचन दिया और उसी मूड में गांव वाले हैं तो कुछ उल्टा सीधा कर देंगे तो ठीक नहीं है ना क्योंकि उनका मति उसी में लगा हुआ है। तुलसी महारानी को देखा हमने कि जितना भी पानी जूठा मीठा सब जाता है, तुलसी महारानी गार्डन बना और उसमें जाता है, ये नहीं बर्दाश्त हुआ। ये आते समय हमने गांव के मुखिया जी को बुलाया, हमके बहुत कुछ ऐसा सब गड़बड़ है लेकिन सफेद गड़बड़ ये है जो कि आप तुलसी महारानी कितना अपमान कर रहे हैं, इसका फल बहुत भयंकर होगा, इतना आपको पाप नहीं करना चाहिए, पाप है, कम से कम ऐसा मत करिए। वो ठीक है, ऐसा हमको गुरु जी ने बताया ना, हमको गुरु जी बताएंगे नहीं, कोई बीड़ी वाले गुरु जी हैं वो नहीं बताएंगे, उनसे ऐसा मत करो आप, ये बोला नहीं लेकिन अंदर यही भाव था, लेकिन उनको समझाया तुलसी महारानी की महिमा और हम चल दिए। तो बहुत सारे गुरु होते हैं लेकिन बहुत सारे गुरु में भी, जैसे एक माता पिता गुरु है नो प्रॉब्लम, बहुत सारे माता पिता गुरु हैं, बच्चे भक्त बनने जाएंगे माता पिता बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं करने का, तो भी गुरु ठीक नहीं है। बहुत सारे गुरु हैं जो ब्राह्मण दीक्षा देते हैं और हमको योग्य बनाते हैं धार्मिक अनुष्ठान करने के, लेकिन भगवान में भक्ति मति नहीं है, तो ऐसे गुरु भी किसी काम के नहीं है। लेकिन तीसरे प्रकार के गुरु जो कृष्ण भगवान सुदामा जी से बता रहे हैं, तीसरा प्रकार के गुरु जो समस्त आश्रमों में जाकर सदस्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करके उनकी मति को हमारे में लगाता है, जिस प्रकार भगवान की भक्ति करके, कैसे भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, समस्त प्रकार के दुखों छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, जो इस प्रकार का ज्ञान देता है परंपरा से जो गुरु है और परंपरागत ज्ञान देता है, जिसका ज्ञान धारण करके जीव की मति भगवान में लग जाती है, ऐसा गुरु परम गुरु होता है और ज्ञानदो गुरु, और निसंदेह उसमें और मुझमें कोई फर्क नहीं होता है, वो मेरे जैसा ही होता है। पहला श्लोक। दूसरा कंटिन्यूअस जो श्लोक है सब गुरु तत्व के एक 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 महिमा के ऊपर बता रहे हैं। तो तीन गुरु में सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन, जिसके ज्ञान से हमारी मति भगवान में लगती है। नन्वर्थ कोविदा ब्रह्मण वर्णाश्रम वातामिह ये मया गुरुणावाचा तरन त्यजो भवाडवम। ऐसे तो वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार प्रत्येक आश्रम और प्रत्येक वर्ण के अपने अपने कुछ निर्धारित कर्तव्य होते हैं, वृत्ति परक धर्म होते हैं, लेकिन समस्त प्रकार के वृत्ति परक कर्मों को करते हुए जो भाग्यशाली जीवात्मा, जो भाग्यशाली व्यक्ति ऐसे गुरु के वचनों, ऐसे गुरु के शब्दों द्वारा कहे गए वचनों का लाभ लेता है अपने जीवन में, वह भवसागर को आसानी से प्राप्त कर जाता है। ये मया गुणावाचा तरन त्यजो भवाडवम, क्योंकि गुरु ज्ञान ही देता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, वो ज्ञान से देख, ज्ञान रूपी चक्षु देकर हमारा ज्ञान रूपी अंधकार हृदय का दूर करता है, तो ज्ञान ही देता है। और समस्त वर्ण और आश्रम में है, और वर्ण आश्रम में अलग अलग जिम्मेदारी होती है, अलग अलग कर्तव्य का निर्वाह करना होता है, लेकिन उन कर्तव्यों के निर्वाह करते हुए या कर्तव्यों की परवाह न करते हुए यदि सिर्फ ऐसे गुरु के वचनों में जो अपनी दृढ़ मति रखता है और उस वचनों को पालन करने का प्रयास करता है, वो बहुत आसानी से भवाडवम इस भव सागर को पार कर जाता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कल के लेक्चर में, यदि आप लोग सुने होंगे प्रभुपाद क्वार्टर में, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 1922 to 1936 बारह तेरह साल हुआ, बारह तेरह साल में मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से बहुत बार नहीं मिला, 8-10 बार ही उनसे हमारा मिलन हुआ, और बहुत बात तो बहुत थोड़ा हुआ, बहुत ज्यादा बात नहीं हुआ, और 12-13 साल में बहुत कम मिला, 8-10 बार मैं मिला, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सफलता क्या था, हमारा सबसे बड़ा सफलता यही था जीवन का कि हमारी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के द्वारा कहे गए शब्दों में अटूट निष्ठा थी, बहुत श्रद्धा थी, बहुत विश्वास था, और कम से कम नहीं तो 10 वर्ष तक, जब पहली बार मिला 1922, फिर 1933 में दीक्षा लिया, 10 साल तक उन्होंने एक वचन मुझे बोला था, क्या वचन बोला था, पहली बार मिले तो यही बोला था कि तुम लोग पढ़े लिखे नौजवान हो, आप लोग पाश्चात्य देशों में जाकर इस सब चीजों का प्रचार क्यों नहीं करते हो। प्रभुपाद जी बोले कि 10 साल तक वो वाक्य मुझे चुभता था, याद आता था, मुझे बार बार याद आता था। और इसके बाद जब उनका हेल्थ डाउन था, और जब मैंने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि आपके बहुत सारे डिसाइपल हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शिष्य हैं, हमारे बहुत सारे गुरु भाई लोग हैं, और आपके लिए बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूं आपके लिए, तो प्रभुपाद जी ने फिर वही आदेश रिपीट किया, हाँ, कि यदि तुम्हारे पास भविष्य में पैसा हो, तुम पुस्तकें छापना और प्रचार करना पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करना। तो प्रभुपाद जी बोले, फिर मुझे वही क्लिक हुआ, तो बोले कि मेरी ईमानदारी निष्ठा यही थी कि मेरे गुरु महाराज मेरी बहुत अटूट श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था, और जिसकी वजह से उसको ही मैंने पूरा करने का प्रयास किया, और जिसकी वजह से आज मैं सफल हुआ। मेरी सिर्फ एक ही, मेरा एक ही योग्यता है, मेरा एक ही सबसे बड़ा जीवन का लाभ है कि मैंने अपने गुरु महाराज की आज्ञाओं को शिरोधार्य किया और उसको पालन करने का प्रयास किया, उसको पालन करने का प्रयास किया, उनके वाक्यों में, उनके शब्दों में मेरी बहुत निष्ठा थी, बहुत श्रद्धा थी, और उसको मैंने ईमानदारी से निभाया, इसलिए मैं सफल हुआ। तो प्रभुपाद जी के एक भक्त, ऐसे प्रभुपाद जी अपने भक्तों को बता रहे हैं, कुछ रूम कन्वर्सेशन चल रहा है, तो प्रभुपाद जी से उनके भक्त बोलते हैं, प्रभुपाद जी आपने अपने गुरु महाराज की आज्ञाओं को बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में, बहुत ही शानदार स्टाइल में आपने पूरा किया। बोले हाँ, मैं इतना शानदार स्टाइल में इसलिए कर पाया क्योंकि उनकी वचनों मेरी श्रद्धा थी, उनकी वचनों मेरा विश्वास था। और ये भी सिद्धांत यहाँ पर है, यदि हम अपने गुरु महाराज के वचनों में, उनकी शब्दों में विश्वास करके निष्ठा से उनकी आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं, निसंदेह कठिनाइयां आती हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में कि चाहे भौतिक जगत में हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, लेकिन कठिनाइयां तो रहेंगी। जैसे आप समुद्र किनारे खड़े हो जाओ तो कभी आप नहीं देखेंगे समुद्र स्थिर है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लहर आती रहती है। ये जो लहर है ये आध्यात्मिक जीवन के लिए भी है, भौतिक जीवन के लिए भी है। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी ये लहर रहती है क्योंकि हमारे अनर्थ हम अपने साथ लेकर आए हैं और उन अर्थों की वजह से अनेक अनेक प्रकार के वेग आते रहते हैं, कठिनाइयां आती रहती हैं। तो गुरु महाराज का आदेश है निष्ठा से पालन करना, लेकिन निष्ठा से पालन करने का प्रयास करेंगे तो भी कठिनाइयां आती हैं। प्रभुपाद जी जीवन में कम कठिनाइयां नहीं आई अपने गुरु महाराज की आज्ञाओं को पालन करने में। इंडिया में 30 साल तक पूरा ऐसे निकाल दिया, कुछ नहीं हुआ, कितना संघर्षमय जीवन है उनका। अमेरिका गए, एक स्थिति ऐसी आई जब उनका सब कुछ चोरी हो गया, टाइपराइटर, बुक, सब कुछ चोरी चला गया, और जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया था पहले भक्त पे, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, प्रभुपाद लीलामृत में है, डेविड, हाँ, प्रभुपाद जी उसके विषय में बहुत सपना देखते थे, किसको मैं भारत लेके जाऊंगा, सबको दिखाऊंगा ये मेरा पहला शिष्य बना, बहुत सारा आशा था प्रभुपाद जी को उस भक्त के विषय में, और वही भक्त अचानक रात को धोखा दे देता है। प्रभुपाद जी रात को गलियों पे आ जाते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो रात्रि थी मेरे जीवन की सबसे भयानक रात्रि थी, मैं जब गलियों में रात को भटक रहा था बिना किसी सहारे के, और मैं सोचा कि मेरा सब कुछ फिनिश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं नहीं सफल हो पाऊंगा, इतनी निराशा प्रभुपाद जी के जीवन में आई थी। प्रभुपाद जी जाते थे बंदरगाह, दूसरे दिन से बंदरगाह जाना चालू किए, बोले वापस जहाज कब जा रहे हैं, इंडिया, मुझे भारत जाना है। फिर प्रभुपाद जी सोचते ठीक है एक दिन और रह के देख लेता हूँ, और थोड़ा प्रयास करके देख लेता हूँ। प्रभुपाद जी कंटिन्यूअस एक दिन का गैप करके एक दिन जाते थे पूछने के लिए कि कब इंडिया वापस जहाज जा रही, मुझे जाना है। प्रभुपाद जी बोलते फिर अंदर सोचता था ठीक है थोड़ा प्रयास करके देख लेता हूँ, कुछ हो गया इसी बीच में तो हो गया। तो ऐसा प्रभुपाद जी के जीवनी में आया, संघर्ष था, लेकिन यदि हमारा वचनों में निष्ठा है और निष्ठा का हम पालन करने के गुरु और कृष्ण गुरु मुख पद्म वाक्य चीते करिया एक यदि हम आराधना करी है मन आशा, यदि हमारे गुरु के चरणों में अटूट निष्ठा है, विश्वास है और यदि हम उसको धीरता से पालन करने का प्रयास कर रहे हैं तो निसंदेह कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा है ही, टेस्ट होगा। लेकिन यदि हम पालन करते रहें तो जरूर वही कृष्ण और गुरु आएंगे और हमारा हाथ पकड़ के मुझे सहायता करके बाहर निकालेंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा है अपने भक्तों के लिए कि आप लोग मेरे शिष्य नहीं हो, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज गए और आप लोगों को भेजा है हमारा सहायता करने के लिए, हमारा हेल्प करने के लिए। ये प्रभुपाद जी ने कहा है लेक्चर में, कैसा नहीं कि आप लोग मेरे शिष्य हो, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज की योजना है, वो गए और जाने के बाद आप लोग को भेजा है हमारा मिशन सफल बनाने के लिए, हमारा उद्देश्य सफल है, ये सब उनकी कृपा से हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। और यही चीज इस श्लोक में भी अभी जो भगवान बता रहे हैं इसमें भी इस सिद्धांत का पुष्टि होता है। भगवान कह रहे हैं, मालूम है सुदामा, एक बार हम लोग अपने गुरु महाराज की, गुरु माता की आज्ञा से हम लोग जंगल में गए थे लकड़ी लाने के लिए, और हम लोग जंगल में लकड़ी तोड़ रहे थे, लकड़ी इकट्ठा भी कर लिए थे। उसी समय बहुत बड़ा एक तूफान आता है, बारिश होता है, तूफान आता है और हम एक तीव्र हवा आता है, बहुत ही भयंकर तूफान हो गया, इतना तूफान हो गया, इतना अंधेरा छा गया कि ऊंचा रास्ता है कि नीचा रास्ता है, कि रास्ते पे कंकड़ है, पत्थर है, सांप है, बिच्छी है, कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतना तेज हवा चल रहा था और विशाल जंगल में हम लोग घुस गए थे, बहुत भयानक जंगल था और आधी तूफान सब कुछ एक साथ चालू हो गया। हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और गृहित हस्ता परिब्रभ्री मातुरा, ये बहुत ही सुंदर शब्द है, इसमें बोलते हैं गृहित हस्ता, हम लोग भयभीत थे, हमारे हाँ सर पे लकड़ी का बंडल था, लेकिन हम लोग क्या किए थे मालूम है, गृहित हस्ता, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम लोग रास्ता भटक चुके थे लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़े थे, और ऐसे ही रह के हम लोग सोच रहे, पूरी रात्रि निकल गई, कुछ प्लानिंग नहीं था। एक ही चीज है महत्वपूर्ण लिख रहे हैं, गृहित हस्ता परिब्रभ्री मातुरा, हम लोग घूम रहे थे, रास्ता खोज रहे थे, मिशन भी था गुरु का, गुरु का आदेश था जाओ लकड़ी लेकर आओ, तो मिशन भी नहीं छोड़ा था, लकड़ी भी सर पे रखे थे, लेकिन क्या था उसमें हम साथ में थे, हमने साथ में हाथ पकड़ा था, हम लोग साथ साथ थे। और फिर उसी समय फिर क्या होता है, बोलते हैं कि हमारे गुरु संदीपनी मुनि हमारी विषम स्थिति को समझकर सूर्योदय होने पर हम शिष्यों को खोज करने के लिए निकल पड़े और हमें विपत्ति में फंसा पाया, और उन्होंने देखा कि हम लोग किस प्रकार विपत्ति में खोज निकाला, गुरु गए, संदीपनी मुनि गए और हमको खोज के निकाला, और इसके बाद हमारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। आगे का श्लोक है, दरअसल भगवान कह रहे हैं, दरअसल सारे सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि वह अपने विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक को अर्पित करके अपने गुरु के ऋण से उऋण हो। हमने पालन किया और गुरु महाराज आए और बोलते हैं, हे बालको, हमारे पास समय नहीं है इसका व्याख्या करने का, मैं संक्षेप में पढ़ देता हूँ। हे बालको, तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो और मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो और तुमने जो वैदिक मंत्र सीखे हैं वे इस जगत में या अगले जगत में तुम्हारे लिए कभी अपना व्यर्थ न खोए। गुरु कृपा मिल गई, कठिनाई थी, विपत्ति थी, संकट था, लेकिन उद्देश्य था नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। फिर वही गुरु आए और इतना बड़ा बेनिफिशन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी विद्या सफल हो गई, मैंने जो तुमको ज्ञान दिया कभी खत्म नहीं होगा, अनेक अनेक जीवनों तक तुम्हारी मति ऐसी सुदृढ़ रहेगी, ये आशीर्वाद दिया है, ये कृपा प्रदान किया। तो इस प्रकार इस प्रसंग से हम एक ही चीज सीख सकते हैं, जो लास्ट प्रसंग है, प्रभुपाद जी का एक कल मैसेज भी आया था व्हाट्सएप में, पढ़ रहा था तो बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मतलब गुरु का आदेश है, गुरु की आज्ञा है, लेकिन भक्ति जीवन में भी भक्ति के पथ पे चलना ये अपने बस की बात नहीं है। एकाकी नाही पाया बल, अकेले हम भगवान का भजन भक्ति नहीं कर सकते हैं, खासकर इस कलयुग में जहां माया का साम्राज्य, माया का पलड़ा बहुत भारी है, तो व्यक्ति को एक संगति की आवश्यकता है, जिसको साधु संगति बोलते हैं। एक लेक्चर में मैं सुन रहा था कि जिस प्रकार छाता होता है, बारिश में हम निकलते हैं और छाता लेकर निकलते हैं, उद्देश्य क्या है कि हम बारिश में भीगे नहीं, तो हम बारिश में भीगे नहीं इसलिए छाता का डिजाइन है, और छाता इस प्रकार बनाया जाता है कि बहुत सारी उसमें तिलियां होती हैं, बहुत सारी तिलियां होती हैं, और वो तिलियों पर काला कपड़ा बना होता है, और हम नहीं भीगते हैं क्योंकि हर एक तिली उस कपड़े को पकड़ के रखी रहती है। तो समझा रहे थे कि ये जो छाता है, छाता में जो एक तिली है जो कपड़े को पकड़ के रखी है, ये वास्तव में भक्तों की संगति है, और यदि हम इस प्रकार भक्तों की संगति में घिरे रहेंगे तो हम माया रूपी बारिश में भीगेंगे नहीं। बहुत जरूरी है उस छाता को बरकरार रखना। कभी कभी छाता का तिली कहीं से टूट जाता है, उधर से पानी आना शुरू हो जाता है, हम क्या करते हैं, फिर जाकर उसको बनवा देते हैं। उसी प्रकार आपस में रहते हैं तो भी स्वाभाविक है, कभी कभी कुछ न कुछ होगा साथ में रहने से, एक साथ में है तो कुछ न कुछ घटनाएं घटेंगी, तुतु मैं होगा, नो प्रॉब्लम। परम पूज्य राधा गुण गोस्वामी महाराज बोलते हैं भक्तों का झगड़ा कितना, भक्तों का गुस्सा कितना, बोलते हैं वांछा कल्प तरुभ्य से इतना। कुछ हो गया शाम को जाके वांछा कल्प तरुभ्य लो और फिर मिला लो, छोड़ो मत, क्योंकि दुर्लभ चीज है, बहुत ही दुर्लभ चीज है भक्तों की संगति हमारे जीवन हमको मिली है, क्योंकि इसी हमारा प्रोटेक्शन हो सकता है। जैसे छाता के तिली टूटता है उधर से पानी आना शुरू हो जाएगा, हाँ हम जाके बनवा लेते हैं। इसी प्रकार रिलेशन खराब हुआ, कुछ ऐसा बात हुआ, नो प्रॉब्लम, होगा, स्वाभाविक है, भौतिक जगत है, लेकिन फिर भी जाकर सामने से उस रिलेशन को मेंटेन करने का, साधु संगति रखने का, अकेले रहने का प्रयास नहीं करने का। तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं माया इतनी प्रबल है कि जैसे ही मैं एकांत में बैठूंगा वैसे ही धन और स्त्री के विषय में विचार करूंगा। इसलिए हमें सदैव भक्तों के संग में रहना चाहिए और हरे कृष्ण जप करना चाहिए ताकि भौतिक पतन से हम स्वयं की रक्षा कर सकें। श्रील प्रभुपाद, हवाई, 7 फरवरी 1975। तो प्रभुपाद जी इस कोर्स के द्वारा हमको समझा रहे हैं कि किस प्रकार, और जो कि दूसरे शब्दों प्रभुपाद जी ने कहा है कि यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो ये प्रेम आपका दिखेगा कि कितना आप लोग आपस में कॉपरेट करके रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत का स्वभाव ही है कलयुग, कलयुग मतलब कलह का युग, कलह मतलब द्वंद, कलह मतलब झगड़ा। तो कृष्ण भक्ति करते समय भी अपने अपने स्तर से अनेक अनेक सोच है भगवान की भक्ति करने का, भगवान की सेवा करने का, जिसमें कभी कभी कुछ हो सकता है, तो नो प्रॉब्लम छोटी छोटी बातों को। मैंने है कि गुरु का उद्देश्य है, गुरु का आज्ञा है, 4 नियम पालन करना है, 16 माला जप करना है, मॉर्निंग साधना करना है। कुछ ऐसे नियम है जो सभी के लिए है, सभी परिस्थितियों में है। मॉर्निंग साधना, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन करना, वो हमको निष्ठा से पालन करना चाहिए। तपस्या लग सकता है लेकिन उस तपस्या का निर्वाह हम करते हैं तो उसमें गुरु और कृष्ण की कृपा है और हम आसानी से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर उपा जी बता रहे हैं इस संदर्भ में कि कश्यप मुनि ने 12 दिन का व्रत और उपवास करने का, भगवान की भक्ति करने का विधि बताया। विधि बहुत कठिन था लेकिन फिर भी अदिति ने बिना आलस्य के, हमारा विधि इतना कठिन नहीं है, हमारा विधि बहुत आनंद का है, सिर्फ 9 बजे तक तपस्या है, थोड़ा इसके बाद खाना है, सेवा करनी है, नाचना है, गाना है, तो जो भी है गुरु देश काल परिस्थिति के अनुसार ही हमको चीज देते हैं, जितना हम निभा सके। तो बहुत ही प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिस्टमेटिक इस कान में हम लोगों को, अभी कल ही हम बात कर रहे थे, कोई हम लोग 2 लोग उधर खड़ा होकर बात कर रहे थे कि प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी का कितना बृहद योजना है। प्रभुपाद जी, वो सीनियर भक्त हमसे बता रहे थे, माता जी सब लोग फूल बना रही थी, बहुत सारी माता जी यहाँ इंगेज है, वहाँ इंगेज, सब लोग फूल बना रही थी। तो प्रभु जी बता रहे थे, सीनियर थे, हमसे बता रहे, देखो प्रभुपाद जी का मिशन कैसा है कि प्रभुपाद जी ने सबको इंगेज करने का प्लानिंग किया है। सब लोग प्लानिंग हो सकता है, पढ़ा लिखा स्त्री पुरुष जो भी है सबके अनुसार योजना बनी है। कितने कितने हर किसी मंदिर में जाओ, 25-30 माता जी लोग लगी है भगवान का फूल बनाने में, उनका दिन पूरा निकल जाता है फूल बनाने में। तो भगवान प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा ये माहौल बना के रखा है कि सब लोग अपने इंद्रियों का प्रयोग करके अपने आप को शुद्ध करके भगवान के धाम में जा सकें, पवित्र करके जा सकें। गुरु जी कल हमको ऐसा बता रहे थे। तो अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। यस्य देवे पराभक्ति यथे देव तथा गुरु, मनुष्य को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए और जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है और गुरु के आदेशों की परवाह नहीं करता तो असफल हो जाता है। यस्य प्रसादात न गति कुतोपी, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, गुरु की कृपा से हमको भगवान मिल सकते हैं। और यदि गुरु की कृपा नहीं है, एक बार वृंदावन में एक माता जी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद भगवान हमारे कार्यों से संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा, हमारा उद्देश्य भगवान की संतुष्टि, भगवान की सेवा, लेकिन भगवान हमारी सेवा से हमारे कार्यों संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। तो प्रभुपाद जी बोले कि बहुत सिंपल आइडिया है। क्या आइडिया है, बोले गुरु तुम्हारे कार्य से संतुष्ट हो रहा है कि नहीं वो देख लो। यदि गुरु तुम्हारे कार्य से संतुष्ट है, गुरु तुम्हारी सेवा संतुष्ट है, तो कृष्ण संतुष्ट है। यदि गुरु संतुष्ट नहीं है तो कृष्ण संतुष्ट नहीं है, कृष्ण के पास जम मारने का प्रयास करना ही नहीं है। पहले गुरु को संतुष्ट करो, गुरु जो कहता है वो करो, उसमें कृष्ण की संतुष्टि है। हाँ, यही सार है मुख्य रूप से। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की नितय गौर प्रेमानंद है। और किसी कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं, तो सिंपल है। गुरु है ना, उनका वाक्य है। दो प्रकार सेवा होती है, बप्पू सेवा वाणी सेवा। वही तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी के जीवन में मैं बहुत कम मिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज से, 8-10 बार मिला, लेकिन उनका वचन उनका आज्ञा जीवन भर सुधार किया मैं। सिंपल सी बात है, वो नहीं उनका वचन उनका आज्ञा उनका पालन करना है, और क्या है। हाँ
हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बताया कि जो दूसरे नंबर के गुरु है कुल गुरु, तो हम आज देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग हैं सिर्फ कुल गुरु को ग्रहण करते हैं, और उसके आगे जो गुरु है जो परम गुरु उनको ग्रहण नहीं करते। तो वो समाज के जो कुल गुरु को ग्रहण किया जो लोग, वो क्या परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है भगवान के दान को?
प्राप्त कर सकते हैं। अभी बीड़ी वाला गुरु को बना क्या मिलने वाला है, थोड़ी कुछ मिलने वाला, तो अज्ञान है। वही बोलेंगे जैसा गुरु वैसा चला, नरक में ठेलम ठेला, सब लोग उसी में जाएंगे, जहाँ गुरु जाएगा उधर लोग जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए जिज्ञासा करनी है हमको, अच्छे गुरु के शरण में जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं।
दूसरे प्रश्न प्रभु जी, जैसे कि गुरु महाराज हमारे साथ में हमेशा नहीं रहते, तो हम सेवा ठीक से कर रहा है और नहीं कर रहा है? और
गुरु महाराज नहीं है, गुरु महाराज के प्रतिनिधि है, नंबर मैनेजमेंट है, उनका आदेश है, उनका लेक्चर है, उनका प्रवचन है, वही हमारे लिए आदेश है।
ठीक है, थैंक यू प्रभु जी।
वही हमारे लिए आदेश है, उसी हमको अपने लिए आदेश खोजना है कि क्या चीजें हैं, उनके साथ जीवन यापन करना है बस। ठीक है,
हरे कृष्णा बाबू जी। जैसे बताया आपने कि बहुत बार हमसे ऑफेंस होता है, अपराध होता है, जिसके कारण हमें बाद में वांछा कल्पत्र को कर लेना चाहिए, लेकिन ये जब अप्लाई करते हैं हमारे लाइफ में, तो जैसे मैंने किसी के सामने गलती किया प्रश्नों से, तो उसे वांछा कल्पत्र करने में इतना अहंकार रोकता है कि हिम्मत ही नहीं होती कि जाए, तो फिर उसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमारा अभिमान हमें रोकता है वो परिणाम करने से।
वही तो अभ्यास करना है, वो जितना हम भक्ति के नियमों का धीरता से पालन करेंगे, ऐसे स्वाभाविक दिन में नहीं आएगा। मैं बैठकर जो प्रवचन दे रहा हूँ ऐसा नहीं कि पालन करते हैं, ये आचार्य लोग गुरु लोग प्रवचन के माध्यम से प्रभुपाद जी अपने शास्त्रों के माध्यम से चीज बता रहे हैं, और हम कहते रहेंगे सुनते रहेंगे, जरूर हमसे होगा, हमको प्रयास करना चाहिए करने के लिए। हम कौन से नियमों का अच्छे से पालन कर पा रहे हैं? वही एक नियम 16 नियम का हम अच्छे से जप कर पा रहे हैं? नहीं। श्रवण कीर्तन मन लग रहा है? नहीं। लेकिन हम कर रहे हैं ना, तो भी अहंकार नहीं जाने दे रहा, लेकिन अहंकार को तोड़ना चाहिए, जाना चाहिए, तोड़ना चाहिए उसको। तो जितना तोड़ेंगे धीरे धीरे, फिर अहंकार अब काम नहीं करेगा, अहंकार बोलेगा अरे हमारा सुनता ही नहीं है, तो अहंकार धीरे धीरे निकलेगा। कोई करना है, मन नहीं करता लेकिन वो करना है, और जब करेंगे हम मन की नहीं सुनेंगे तो हमको मन को मारना है। भजन को महाराज बोलते हैं कि मन में बहुत सारे अनर्थ हैं, उसमें भी अहंकार एक अनर्थ है जो हमको रोकता है, तो उसको मारना चाहिए हमको। हमको बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्या हमारे लिए फिट है। तीरा दपी सुनी चेना तरूरी बस सही सुना चेतना, बोले हैं तो कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा ना। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद है।